नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने में ही उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया, अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर वे विश्राम करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला, इस बात पर मुझे एकाएक विश्वास ही नहीं होता, क्या ये बात सच है? भीमसेन ने उसको मार दिया? मेरे पुत्र का शरीर तो वज्र के समान कठोर था, क्या उस वज्र को भी तोड़ दिया? यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मानना पड़ेगा कि संसार में प्रारब्ध से पार होना बड़ा मुश्किल है। संजय, मेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर के भी हजारों टुकड़ों वाला नहीं हो गया। भला पुत्रहीन होकर हम बुढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, अब मैं पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? ओ, जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरे जिंदगी के आखिरी दिनों में जो दुख ही दुख प्रकट कर दिया, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? बात बात पर वो भीमसेन कहेगा कि तुम्हारे पुत्र ने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, तुम्हारे पुत्र ने वो किया, हम क्या चुप थोड़ी बैठ सकते? सुनाएगा, क्या करूं संजय? आंखों के सामने यूं ही अंधकार है, अब तो जीवन में पूरा अंधकार ही अंधकार दिखता है। अच्छा संजय, ये तो बताओ, इस प्रकार बेटा दुर्योधन का अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, आप इस कथा को ध्यान से सुनते जाइए। आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी दूर गए थे तो इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर जंगल देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं फैली हुई थी। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े, स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर जी अस्ताचल की ओर चले गए। भास्कर माने सूर्य, अस्ताचल में चले गए। संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब और छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र, तारों से सुशोभित गगनमंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वटवृक्ष के निकट पास ही बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक व्यक्त करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा दोनों तो गहरी नींद में सो गए। यद्यपि वे महामूल्य पलंगों पर सोने वाले थे, परंतु उनको गहरी नींद आ गई। अश्वत्थामा को नींद नहीं आई, जिसके अंदर भयंकर रोष, क्रोध, प्रतिशोध भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, वो ऐसा नींद कैसे लेगा। नींद नहीं आई, चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उस वटवृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवों ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया। वे आनंद से अलग अलग घोंसलों में जाकर सोए हुए थे। इसी समय एक भयानक उल्लू आया। वो धीरे धीरे गुनगुनाता बट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौओं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौओं के पैर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट डाले, किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौओं को बात ही बात में मरते हुए देखा। इससे वे सारा वटवृक्ष कौवे के शरीर और अंगावयवों से भर गया। अब जगह कौओं के कहीं मुंह है, कहीं पंजा है, कहीं पांख है, सबको मार दिया उस उल्लू ने। रात्रि के समय उल्लू का ये कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने सोचा कि अरे, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश दिया है। ये समय इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं इन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा भी कर चुका हूं। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूंगा तो निस्संदेह मेरे प्राण मुझसे अलग हो जाएंगे। हां, कपट से अवश्य सफलता मिलती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने तो पद पद पर अनेक निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं, कितना पाखंड किया है, धर्म के नाम पर कितना अधर्म किया है। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस सेना पर आक्रमण रात्रि में कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का अपने मन में निश्चय किया। फिर गहरी नींद में सोए हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को बहुत प्रयत्न से जगा करके अपने मन की बात बताई। कृपाचार्य, हे कृतवर्मा जी, मेरी बात को सुनिए। सोते हुए पांडवों को मार देने में मुझे कोई अधर्म नहीं दिखता है। जो कुछ सोचा था वो सब कह दिया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में डूब गए, शर्म भी आई और उन्हें उसका कोई उत्तर भी नहीं सूझा। तब अश्वत्थामा ने थोड़ी देर विचार करके गदगद होकर कहा, महाराज, दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया और उस पापी भीम ने एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर पैर रखकर लात मारी। उसका कितना खोटा काम था, उसको कोई नहीं देखता, फिर भी पांडव धर्म धर्मात्मा कहलाते हैं और हम लोग यदि रात्रि में उनको मारते हैं तो हम पापी कहलाएंगे। वाह, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया कि आज इस महान संहार से हम तीन ही बचे हैं। मैं तो इन सबको समय का फेरी मानता हूं। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य बताने की कृपा करें। आचार्य कृप ने कहा, महाबाहु, तुमने जो बात कही वो मैंने सुन ली, अब मैं जो बात कहता हूं उसको तुम भी सुनो। जितने मनुष्य हैं ये सब अपने भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से बंधे हुए हैं। इस जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ के अलावा कुछ नहीं है। अकेला भाग्य या अकेला पुरुषार्थ कार्य सिद्धि नहीं कर सकते। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है और इन दोनों में तुलना की जाए तो भाग्य प्रबल है। जो होनार है, जो घटना होती है, होने में भाग्य प्रबल होता है और जो करना होता है उसमें पुरुषार्थ प्रबल होता है। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके लिए पुरुषार्थ की सिद्धि भी दैव के अधीन और दैव की अनुकूलता से उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्य कुशल मनुष्य देव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं वो बहुत सावधानी से करते 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 भी फलदायी नहीं होते। इसके विपरीत जो लोग आलसी अमनस्वी होते हैं और किसी काम को आरंभ करना अच्छा भी नहीं लगता किंतु बुद्धिमानों को ये बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्राय निष्फल नहीं देखा जाता किंतु कर्म न करने पर भी तो दुखी दिखाई देता है। जो प्रयत्न करने में भी देव योग से सब प्रकार से फल प्राप्त कर लेते हैं तथा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो कितने बिरले होते हैं। तत्परतापूर्वक कार्य में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोक में प्राय तत्परता के साथ काम करने वाले ही अपना हित साधन करते दिखाई देते हैं। उन्हें यदि कार्य आरंभ करने पर कोई फल नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती, परंतु जो बिना कुछ के ही फल पा लेता है उसकी लोक में निंदा होती है और प्राय लोग उससे द्वेष भी रखने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल दैव या केवल पुरुषार्थ को ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है, यह बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी जो फल नहीं मिलता उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं, परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है और उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है उसका वो आचरण ठीक माना जाता है। कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार बार सलाह लेनी चाहिए। कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीं के आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है और उसे अपने कार्य का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, किंतु जो पुरुष राग क्रोध भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है वह उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन भी लोभी और औछी बुद्धि का था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्टजनों की सलाह से ये सारा काम किया। पांडव लोग गुणों में उनसे बड़े चढ़े, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे बैर ठान लिया। वह पहले से ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था दुर्योधन, इसलिए धीरज धारण नहीं कर सका और न उसने अपने मित्रों की बात सुनी। इससे अपने प्रयास में विफल होकर पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने इस पापी का पक्ष लिया, इसलिए हमें भी ये महान अनर्थ भोगना पड़ रहा है। हमें क्या मतलब था, मैं बहुत सोचता हूं तथापि इस संकट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सूझती है। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में समर्थ न हो तो उसे अपने भाई बंधु सुहृदों से सलाह लेनी चाहिए। वहीं इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति होती है और वहीं इसे अपने हित साधन का फल मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दें वही वैसे ही करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और महामती विदुर जी से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा वे कहें वही हमारी कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। मेरी बुद्धि तो यही बात कहती है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता उनका तो प्रारब्ध खोटा ही समझना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन आचार्य कृप की ये धर्म और अर्थयुक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा, प्रत्येक मनुष्य में जो अलग अलग बुद्धि होती है वे उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धिमान मानते हैं, सबको अपनी समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार बार दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बड़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हीं का विचार बहुत से मनुष्यों से मिल जाता है तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार बार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किंतु समय के फेर से उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती है तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार की वातावरण की बातें होती हैं। एक मनुष्य युवावस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्ध सा हो जाता है, मध्यम अवस्था में दूसरी प्रकार की बुद्धि होती है, वृद्धावस्था में उसकी और ही बुद्धि होती है। जब मनुष्य पर भारी संकट आता है या जब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धि में तरह तरह के विकार आता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य समय समय पर भिन्न भिन्न बुद्धियों में झूलता रहता है। उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर मालूम देती है, किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छा समझता है वैसा ही अपना भाव बना लेता है और उसकी बुद्धि उद्योग में सहायक भी हो जाती है। सभी लोग अपनी बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं। ब्राह्मणों को सर्वोत्तम वेद विद्या, क्षत्रिय को उत्तम तेज, वैश्य को व्यापार कौशल और शूद्र को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता ये धर्म ही देता है। संयमहीन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, अकुशल वैश्य निंदनीय है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शूद्र अधम है। मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मंद भाग्य होने से इस क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूं। यदि क्षात्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्म को न करूं तो मेरा यह आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रणक्षेत्र में दिव्य धनुष दिव्य शस्त्र धारण करता हूं, ऐसी स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा। जहां भी जाऊंगा लोग कहेंगे तुम्हारे बाप की क्या दशा हुई। अतः आज मैं क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के मार्ग का अनुसरण करूंगा। आज विजयश्री से देदीप्यमान पांचाल वीर बड़े हर्ष से कवच उतार कर बेखटके सो रहे होंगे, अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर मैं धावा बोलूंगा और नींद में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर दूंगा, तभी जाकर मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है उसी से आज मैं पांचालों को भी भेज दूंगा। आज रात्रि में मैं पशुओं के समान बलपूर्वक पांचाल रात धृष्टद्युम्न का सिर कुचल डालूंगा। आज ही रात मेरी तीखी तलवार से सोए हुए पांचाल और पांडव वीरों का सिर उड़ा दूंगा तथा आज रात्रि में सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ बनूंगा। कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामन, तुम अपनी जिद से हटने वाले तो नहीं हो। पांडवों से बदला लेना ये एक प्रकार से तो ठीक है, परंतु अधर्म है। रात्रि विश्राम करो, कल सवेरा होने पर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। बहुत देर तक जग गए, इसलिए आज की रात सो लो, इससे तुम्हें विश्राम मिलेगा, नींद आएगी, तुम्हारा चित्त ठिकाने पर आ जाएगा। अभी हमारी बात तुम्हारे अंदर जस्ती नहीं है। हम लोग भी रात भर सोकर नींद और थकावट से छूट जाए, रात बीतने के बाद हम शत्रुओं का संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारे सामने आएगा, अपन तीनों मिलकर के युद्ध करेंगे। जब संग्राम में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी हमारी रक्षा में रहेगा, तो आ जाओ, इंद्रादि देवता भी आ जाओ, क्या लड़ाई करेंगे अपने सामने। कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पांव पीछे नहीं बढ़ाऊंगा। या तो संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संहार करके ही लौटेंगे, या वहीं प्राणों की बलि दे देंगे। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, कल हम पूरे उद्योग के साथ संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे। कृपाचार्य की ये बात सुनकर के अश्वत्थामा क्रोध में आग बबूला हो गया। कहने लगा, जो पुरुष दुखी है, क्रोध में भरा हुआ है, किसी अर्थ के चिंतन में लगा है अथवा किसी कार्य सिद्धि की अधेड़ बुन में व्यस्त है, कृपाचार्य जी, क्या उसे नींद आ सकती है? आप विचार करो, आज ये चारों बातें मुझे घेर रखी हैं। मैं बड़ा दुखी हूं, क्रोध से भरा हुआ हूं, अपने रात दिन अर्थ के चिंतन में लगा हुआ हूं, और कैसे पांडवों की सेना को पराजित किया जाए इस चिंतन में डूबा हुआ हूं। मेरी नींद को तो क्रोध ने हराम कर दिया। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिता का वध किया है, ये बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। कृपाचार्य जी, इसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। आपने तो सब प्रत्यक्ष देखा ही था, उससे हर समय मेरे मर्म स्थानों में पीड़ा होती रहती है। हाय, मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मुहूर्त भी किसी प्रकार जी रहा है? मैंने पांचालों के मुख से द्रोण मारे गए यह शब्द सुना, विश्वास नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे सब बातों का ज्ञान हुआ। तब मैंने मन में सोचा, मेरे जीते जी धृष्टद्युम्न इस संसार में जी सकता है? मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना जीवित नहीं रहना चाहता। राजा दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं, उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोर चित्त है जिसकी आंखों से आंसू न निकलेंगे? मेरे जीवित रहते मेरी मित्र मंडली की ऐसी दुर्दशा, इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया है। कृपाचार्य जी, आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी अधेड़ गुण में लगा रहता है, इसलिए मुझे नींद कैसे आ सकती है, सुख कैसे मिल सकता है? जिस समय दूतों ने मुझे मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का संवाद सुनाया, उस समय मेरे हृदय में आग सी लग गई। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रुओं का संहार करके विश्राम लूंगा और तभी मैं निश्चिंत होकर के सोऊंगा। कृपाचार्य जी ने कहा, अश्वत्थामन, धैर्य से काम लो, पुरुषार्थ को संभालो। मेरा विचार है, जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। इस प्रकार मेधावी होने पर भी जिसने विनय नहीं सीखी, वह धर्म और अर्थ का निर्णय कुछ नहीं समझ सकता। अश्वत्थामन, विनय होना बहुत बड़ा बल है। मूर्ख योद्धा बहुत समय तक पंडितों की सेवा में रहने पर भी धर्म का रहस्य नहीं जान सकता। जिस प्रकार करछी दाल का स्वाद नहीं चख सकती, किंतु जैसे जीभ दाल का स्वाद तुरंत जान लेती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त में पंडितों के पास जाकर तत्काल धर्म को पहचान लेता है। जो पुरुष धर्म श्रवण की इच्छा वाला हो, बुद्धिमान हो और संयतेंद्रिय हो, वो सब शास्त्रों को समझ लेता है। परंतु जो दुरात्मा और पापी मनुष्य बतलाए हुए अच्छे काम को छोड़ करके दुख रूप फल देने वाले कर्म को करता है, उसे किसी प्रकार कर्म से नहीं रोका जा सकता। जो सनात होता है, उसको सुहृदगण ऐसे कर्म करने में रोका करते हैं, पर उसके प्रारब्ध में यदि सुख मिलना होता है तो वह उस कर्म से रुक जाता है, नहीं तो नहीं रुकता। जिस प्रकार विक्षिप्त चित्त पुरुष को भला बुरा कहकर काबू में किया जा सकता है, उसी प्रकार सुहृदगण भी समझा बुझाकर डांट डपट कर उसे वश में कर सकते हैं, नहीं तो वो वश में नहीं आ सकता। तात, तुम भी मन को काबू में करो। अश्वत्थामन, जीवन कल्याण के साधन में लगाओ, मेरी बात मानो, जिससे आगे तुमको पश्चाताप न करना पड़े। जो सोए हुए हों, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हों, रथ और घोड़े खोल दिए हों, और जो मैं आपका ही हूं ऐसा कह रहे हों, जो शरणागत हों, जिनके बाल खुले हुए हों और जिनके वाहन नष्ट हो गए हों, लोकों में उनका वध करना धर्मतः अच्छा नहीं माना जाता। इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंतता पूर्वक कवच उतारकर निद्रा में अचेत पड़े हैं। जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा, वह अवश्य बिना नौका के अगाध नरक में डूब जाएगा। लोक में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ माने जाते हो अश्वत्थामन। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष देखने में नहीं आया है। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, फिर किस कारण से इतना क्षुद्र और निंदनीय कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो? अतः कल जब सूर्य उदित हो, सब प्राणियों के सामने शत्रुओं को अपने बाहुबल से ललकारो, उनके साथ युद्ध करो। या तो वे हमें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे, युद्ध का नियम तो यही बोलता है। अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं, क्या मैं उसको जानता नहीं हूं? परंतु धर्म की मर्यादा को तो पांडवों ने कितनी बार तोड़ा है। आपने पांडवों को जाकर नहीं कहा कि धर्म है? धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिता का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया धस गया, उस समय संकट में पड़े हुए थे, उस समय कृष्ण ने ही तो मारने का आदेश देकर अर्जुन ने उसको मारा है। वहां धर्म कहा गया था? पितामह को शिखंडी की ओट में रखकर अर्जुन ने कृष्ण के रथ पर से बैठ करके जो बाण मारे थे, और जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए, वे निरायुध थे, तब भी किस प्रकार से उन पर बाण छोड़ा गया? कृष्ण भी तो वही थे जो धर्म के सबसे बड़े रक्षक। उस समय धर्म कहां गया था? वीरवर भूरिश्रवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे। सात्यकी ने सब राजाओं के चिल्लाते चिल्लाते भी उनको मार दिया। और महाराज दुर्योधन ने भी भीमसेन के साथ गदा में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक चोट खाई है, इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं अपने पिता का वध करने वाले इन पांचालों को रात में सोते हुए ही मारूंगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है इसके लिए मुझे बड़ी उतावली हो रही है, इस जल्दीबाजी में मुझे नींद नहीं आ सकती और चैन भी कैसे पड़ सकता है। संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न कोई आगे जन्म लेगा जो पांडवों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके, मैं तो निश्चित ही मारूंगा। संजय कहते हैं महाराज कृपाचार्य से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।